ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। बैठक के दौरान भारत और सिंगापुर के नेताओं ने दोनों देशों के बीच उभरते हुए और भावी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार किया। दोनों देशों ने 6 प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया। इनमें डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा तथा अत्याधुनिक विनिर्माण और संपर्क सुविधाएं शामिल हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रेलवे तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। सिंगापुर की ओर से वहां के उप प्रधानमंत्री गन किंग योंग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत और सिंगापुर के बीच आपसी व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है। सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में आज वित्तीय कार्रवाई बल FATF के अध्यक्ष टी राजाकुमार से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने FATF की निष्पक्ष कार्रवाइयां करने के लिए उनकी सराहना की। दोनों ने FATF के भविष्य और संगठन में भारत की भूमिका के बारे में विचार विमर्श किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई जैव आर्थिक नीति से आगामी वर्षों में भारत विश्व में अग्रणी देश होगा। डॉ सिंह ने नई दिल्ली में जैव आर्थिक नीति की जानकारी देते हुए कहा कि देश की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये 2014 की 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने का फैसला किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की संशोधित सूची जारी की। इससे पहले पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 90 सदस्यों वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के बारे में संसद सदस्य कंगना रनौत के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है। पार्टी ने कहा है कि सुश्री रनौत नीति संबंधी मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है। पार्टी ने सुश्री रनौत से कहा है कि वे भविष्य में ऐसे बयान देने से बचें। भारतीय तटरक्षक बल ने आज मालवाहक पोत ITT प्यूमा के चालक दल के 11 सदस्यों को बचा लिया। ये जहाज कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाते समय पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के पास डूब गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संकट में फंसे जहाज से संदेश मिलने के तुरंत बाद तटरक्षक बल के 2 जलयान और 1 डोर्नियर विमान को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। देशभर में जन्माष्टमी का त्यौहार अत्यंत उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में विशेष उत्साह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण भीतरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश हो सकती है। उधर दक्षिण भारत में भी अगले 3 दिनों के दौरान केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। काठमांडू में सैफ अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मैच के दूसरे हाफ में बांग्लादेश 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।